नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, स्वागत आपका।
धन्यवाद धर्मेंद्र।
अब सचिन, क्या लग रहा है ब्रिस्बेन में? कल का जो दिन है काफी अहम है, रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर है।
बिल्कुल,
ये मैच को बचा सकते हैं या सिर्फ बारिश ही मैच को बचा सकती है?
देखिए, बहुत दावे से तो कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस तरीके का खेल चल रहा है उसके हिसाब से तो हम बहुत गहरे संकट में फंसे हुए हैं। और ये पांचवें विकेट पे अगर कोई अच्छी साझेदारी होती है धर्मेंद्र, और साथ में बारिश भी अगर कुछ अपना काम करती है, तब तो ये मैच बच सकता है। नहीं तो आप समझिए कि 196 ओवर का खेल बचा है जिस तरीके से जो टेस्ट मैच में होना चाहिए, तो हमारी इतनी लंबी पारी चलनी चाहिए कि हम इस मैच को बचाने के लिए अपने कोई दावेदारी पेश कर सकें। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी संकट टला नहीं है, संकट है
जी। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। ब्रिस्बेन क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत पर फॉलो ऑन का खतरा, ऑस्ट्रेलिया के 445 रन के जवाब में सिर्फ 51 रन पर 4 विकेट गवाए। रिया शिरीष तट्टे ने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। भारत ने चीन को हराकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीती और विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश का स्वदेश वापसी पर चेन्नई में भव्य स्वागत हुआ। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। ब्रिस्बेन में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में भारत मुश्किल स्थिति में है। आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में मात्र 51 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। मेहमान टीम पहली पारी के आधार पर मेजबान टीम से अभी भी 394 रन पीछे है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
गाबा की जिस पिच और परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 445 रन बनाए, उसी पिच पर भारतीय बल्लेबाजी एक बार फिर मुश्किल में नजर आ रही है। युवा यशस्वी जायसवाल से लेकर अनुभवी विराट कोहली तक ने स्विंग और उछाल वाली पिच पर कंगारू तेज गेंदबाजों के सामने हथियार डाल दिए हैं। अभी तक भारतीय बल्लेबाज मुश्किल परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ दिखे हैं। अब रही सही उम्मीद, 33 रन बनाकर खेल रहे केएल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी पर टिकी है। अगर चौथे दिन ये दोनों ओवरकास्ट कंडीशन के बीच बड़ी साझेदारी करने में सफल रहे तो भारतीय टीम एक ड्रॉ की उम्मीद कर सकती है। मेहमान टीम की गेंदबाजी का दारोमदार एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह के कंधे पर ही रहा और उन्होंने 6 विकेट हासिल किए। हालांकि बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में खराब दौर से जूझ रही भारतीय टीम का बचाव करते हुए अपने पर अतिरिक्त दबाव की बात को खारिज कर दिया और कहा कि टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और अनुभवी होने के नाते अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाना उनका काम है।
As a team are going through a transition, a lot of new players are coming here and it's not the easiest place to play cricket. Over here it's a different atmosphere with this wicket being a different challenge. So yeah, we're not looking at that. Obviously as a bowling unit, as I said, we are in transition, so it's my job to help the others. I have played a little more than them, so I am trying to help them. But again, everyone will learn through it, will get better and eventually will find different ways. So this is the journey that you'll have to go.
वैसे इस मैच पर बारिश का साया पहले दिन से ही रहा है। आज भी बार-बार आसमान से गिरती बूंदों ने खेल को बाधित किया। अगले दो दिन तक भी ब्रिस्बेन में मौसम विभाग ने अच्छी वर्षा की संभावना जताई है। भारत के हाथ से जीत तो निकल चुकी है, अब अगर उसे ये मैच बचाना है तो रोहित और राहुल के साझेदारी के साथ साथ इंद्रदेव का भी साथ चाहिए होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो गहरा संकट है और इस गहरे संकट से निकालने का जिम्मा कहीं न कहीं रोहित शर्मा और केएल राहुल पर तो है ही, लेकिन कल के दिन के अगर मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो 30 मिलीमीटर बारिश की संभावना जताई गई है ब्रिस्बेन में। यानी दिन भर बारिश हो सकती है और
उसी तरीके से मुझे लगता है रह सकता है जैसे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी चलती रही, कभी रुक रहा है फिर खेल चालू हो रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि जब टॉस जीता था तो इसी कंडीशन को देख के पहले बल्लेबाजी कराने का फैसला किया, तो वो फैसला तो गलत साबित हो गया क्योंकि अगर आप 400 से ऊपर रन बनने देते हैं, बुमराह की तारीफ है 6 विकेट लिए लेकिन और गेंदबाजों का उतना अच्छा साथ नहीं मिला, फिर वो भी एक तरीके से लगाम लगाने में पूरी तरह सफल नहीं होते दिखे। 6 विकेट तो जरूर है उनके खाते में, निजी उपलब्धि भी आई है, 50 विकेट पूरे किए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पे, लेकिन 450 के करीब का स्कोर अगर बन रहा है ऐसी कंडीशन में और आपके बल्लेबाज 51 पे 4 का स्कोर
जी
दिखा रहे हैं
टॉप ऑर्डर के,
तो स्थिति तो बहुत खराब है। अब इसमें यही है कि पहले तो आप फॉलो ऑन का टारगेट बनाइए कि हम उसको टाल सकें, 246 रन आपको चाहिए,
195 अभी भी आवश्यक
जी है। बिल्कुल, तो वो एक तो पहले तो ये टारगेट, तो अब ये स्थापित जोड़ी यही है आपके पास। हालांकि बहुत से बातें हो रही हैं कि 20 साल पहले लक्ष्मण और गांगुली ने ऐसा किया था, अगर ये जोड़ी उसी तरीके से खेले, उनसे प्रेरणा ले, तो मैच में कुछ भी अभी परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के, हालांकि होती हैं करामात होती हैं, कमाल होते हैं क्रिकेट मैच में, लेकिन वो उस पारी को उस तरीके से दोहराना, क्योंकि अभी हालात जो है वो भारतीय टीम की बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और वो बड़ी टीम थी और उसमें एक के बाद एक दिग्गज खिलाड़ी थे।
जी, अगर हम बात करें गेंदबाजी की, जैसा आपने कहा कि 6 विकेट जरूर लिए बुमराह ने, लेकिन बुमराह के और साथी की तलाश अगर हम कहें तो वो जारी है, कोई साथी मिल नहीं पा रहा उनको, शमी पूरी तरह से फिट है नहीं,
जी बिल्कुल,
और सिराज की बात करें तो वो लय में नहीं दिखाई दे रहे हैं, परिस्थितियां वही थी, सब कुछ वही था, बारिश भी हुई, ओवरकास्ट कंडीशन की बात करते हैं वो भी वही था, एक तरफ जो है हेड जो है वो बना जाते हैं 150 से ज्यादा रन,
जी बिल्कुल,
स्टीवन स्मिथ जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो शतक बना जाते हैं, और हमारे जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, चाहे युवा बल्लेबाज की बात करें या बेहद अनुभवी विराट कोहली की बात करें, बहुत संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। आपको नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया ने कंडीशन का ज्यादा बेहतर फायदा उठाया?
निश्चित तौर पे, देखिए उन्होंने तो फायदा उठाया, उन्होंने जिस तरीके से वापसी करी दूसरे टेस्ट में, इसी से जाहिर होता है कि वो किस तरीके की क्रिकेट खेलने का मादा रखते हैं। पहले मैच में जो जिस तरह से गेम पलट गया था, उसके बाद भारतीय टीम उस तरह दबाव नहीं बना सकी जो दूसरे टेस्ट में उनका होना चाहिए था। हालांकि ये भी कहने की बात है कि भाई वो गुलाबी गेंद से खेला गया था, डे नाइट मैच था, उसमें उनका दबदबा रहता है, उस मैच में वो कभी हारे नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें हमेशा, ऐसा नहीं होता कि हमेशा कोई
प्रोफेशनल है तो इस तरह की
बातें, बिल्कुल बिल्कुल, कि इस कोर्ट पे फलाना खिलाड़ी हारा ही नहीं तो कभी जिंदगी में हारेगा ही नहीं, तो इस तरीके से नहीं चलता है। प्रोफेशनल जो आपने बात कही वही है, तो ये तो एक कमी है कि, और बदलाव भी किया गेंदबाजी में, हर्षित राणा को हटाया, एक नए गेंदबाज को आकाशदीप को लेके आए, स्पिन गेंदबाजी में आपने बदलाव किया, आप रविंद्र जडेजा को लेके आए कि आपकी बल्लेबाजी भी थोड़ी गहरी हो सकेगी, लेकिन वो भी बहुत नाकाम, देखे रन दिए थोड़ा उनको, जबकि रन बचाने के लिए, रन रोकने के लिए माहिर माना जाता है, लेकिन उन्होंने भी अच्छा खासे रन दिए, करीब 95 रन उन्होंने दिए, एक भी विकेट उनको नहीं मिला। तो गेंदबाज तो एक तरीके से देखिए संघर्ष करते ही नजर आए, जिस तरह एलेक्स केरी ने अपना हाफ सेंचुरी पूरी करी, 70 रन बनाए, अच्छे बनाए, मतलब बहुत जैसे कह सकते तेज गति से बनाए, तो ये भी एक फैक्टर था कि जितने बड़े तक स्कोर तक पहुंचे, और हमारे गेंदबाज बड़े लाचार से थे ऐसे बल्लेबाजों के सामने।
सिर्फ गेंदबाज लाचार थे बल्कि कप्तानी भी लाचारी भरी दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगर हम बात करें कप्तानी की, तो उस तरह की कप्तानी, एग्रेसिव कप्तानी यहाँ पर दिखी नहीं, ऐसा लगा कि बस विकेट मिल जाए, इस तरह का अप्रोच कप्तानी
जी, बिल्कुल में भी बिल्कुल, ये भी बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब वही है कि अभी सारा दारोमदार यही आ गया है कि कप्तान साहब अभी खुद क्रीज पे हैं, अभी उनको खाता खोलना है, अभी उनको दिखाना है कि अब ये वो कप्तानी किस तरीके से, बिल्कुल कप्तानी पारी खेलें और टीम को यहाँ संकट से निकालें, तब लगेगा कि नहीं ऑस्ट्रेलिया में जो है वही टीम, क्रिकेट टीम खेल रही है जिसके हम लोग इतने गुणगान करते रहे हैं।
बिल्कुल, नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता NSCC में औरंगाबाद की युवा निशानेबाज रिया सुरेश तट्टे ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीता। रिया ने पंजाब की सिमरनप्रीत कौर बरार को 7-2 से शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपियन और पूर्व एशियाई खेल चैंपियन राही सरनोबत ने तीसरा स्थान हासिल किया। रजत पदक जीतने वाली सिमरनप्रीत ने इसके अलावा आज ही जूनियर महिला खिताब जीतकर इस साल का शानदार समापन किया। उन्होंने हरियाणा की पायल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस श्रेणी में रिया ने कांस्य पदक जीता। बात हॉकी की, भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। कल रात मस्कत में खेले गए फाइनल में उसने चीन को कड़े मुकाबले में 3-2 से पराजित किया। ये रिपोर्ट।
ओमान की राजधानी में भारत की बेटियों ने एक बार फिर तिरंगा शान से लहराया। टीम ने फाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया और लगातार दूसरी बार महिला जूनियर एशिया कप जीतकर अपनी बादशाहत बनाई। लीग मैच में चीन के हाथों पराजित हुई भारतीय टीम खिताबी मुकाबले में पूरी तरह से बदली हुई और जीत के लिए प्रतिबद्ध नजर आई। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। मैच में बढ़त चीन ने बनाई। उसकी तरफ से 30वें मिनट में जिनजुंग ने गोल किया। हाफ टाइम तक यह बढ़त कायम रही, लेकिन कर्णिका ने मध्यांतर के बाद गोल कर भारत को बराबरी पर ला दिया। जब मैच पेनाल्टी शूट आउट में गया तो भारतीय स्ट्राइकरों के साथ साथ गोलकीपर ने भी लाजवाब प्रदर्शन किया। भारत के लिए साक्षी राणा, इशिका और सुनिधिता ने गोल किए। जवाब में चीन की तरफ से दो गोल ही हो सके। भारतीय गोलकीपर निधि ने चीन की टीम के तीन प्रयासों को नाकामयाब किया। इस जीत से हिंदुस्तानी लड़कियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि जूनियर हॉकी में एशिया में फिलहाल उनका कोई जवाब नहीं है। इस प्रदर्शन से इन लड़कियों ने यह दिखाया है कि भारत में महिला हॉकी का भी स्वर्णिम भविष्य है। हॉकी इंडिया ने भी टीम के इस प्रदर्शन को हाथों हाथ लिया और खिलाड़ियों के लिए 2-2 लाख तो स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए 1-1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
तो भारत में हॉकी का स्वर्णिम दौर दिखाई दे रहा है। पहले महिला जो सीनियर टीम थी उन्होंने एशियन चैंपियनशिप जीती और अब जूनियर टीम ने भी उसी पदचिन्ह पर चलते हुए एक शानदार कामयाबी।
अब देखिए कमाल की बात यह है कि इसमें भी गोलकीपर का ही रोल बहुत अहम है। जिस तरह से हमारी मेंस टीम ने जो सफलता हासिल करी उसमें सृजेश का बहुत बड़ा हाथ है, उसी तरीके से निधि ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। और इसी टीम से चूंकि हम लीग में हारे थे तो एक बड़ा दबाव रहा होगा कि फाइनल में इससे किस तरीके से पार पाते हैं, लेकिन वो टाई ब्रेकर में कम से कम ये साबित हो गया कि हम उनसे बेहतर हैं। और दीपिका जो है इस टूर्नामेंट की देन रही, उन्होंने 12 गोल किए हैं इस टूर्नामेंट में और ये एक बड़ी सफलता है किसी भी खिलाड़ी के लिए निजी तौर पे प्रदर्शन करते हुए।
विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश का आज स्वदेश वापसी के बाद चेन्नई हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों प्रशंसकों और खेल प्रेमियों ने गुकेश का झंडे और बैनर के साथ अभिनंदन किया।
दुनिया के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन 18 साल के डी गुकेश के स्वागत में चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर खेल प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। एयरपोर्ट से जैसे ही गुकेश बाहर आया पूरा माहौल हर्ष से भर गया। उनके अभिनंदन के लिए पहुंचे हर उम्र के लोग झूम उठे। न सिर्फ आम बल्कि खास लोग भी इस भीड़ में मौजूद थे। हर कोई अपने चहेते बाजीगर की एक झलक देखने और उन्हें छूने के लिए बेताब था। भीड़ उनको देखते ही उतावली हो गई, जिन्हें नियंत्रित करने में पुलिस बलों को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। मुकेश भी स्वागत से अभिभूत दिखे। इस दौरान गुकेश ने कहा कि बचपन से ही उनका सपना विश्व चैंपियन बनने का था। उन्होंने इस समर्थन के लिए प्रशंसकों का भी धन्यवाद किया। गुकेश ने सिंगापुर में विश्व चैंपियनशिप की 14वीं और अंतिम बाजी में चीन के डिंग लिजेन को शतरंज की बिसात पर मात देकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। वो दुनिया के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने के साथ साथ भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने इस दिमागी खेल में दुनिया में अपनी बादशाहत साबित की। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैम।
स्टवेंजर में अगले साल होने वाले नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में डी गुकेश का सामना दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से होगा। टूर्नामेंट 26 मई से 6 जून तक खेला जाएगा। हांगकांग में विश्व टीम स्क्वाश चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम 5वें जबकि महिला टीम 7वें स्थान पर रही। पुरुष टीम ने 5वीं अर्हता प्राप्त मलेशिया को जबकि महिला टीम ने 9 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। राष्ट्रीय चैंपियन अनाहत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम ने 12 साल बाद विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। ओस्लो में कल पहले वाल्डनर कप टेबल टेनिस में टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को 14-0 से पराजित किया। भारत की मनिका बत्रा भी टीम एशिया का हिस्सा थीं। 86वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत बेंगलुरु में बुधवार से होगी। पहले दिन अंतर क्षेत्रीय टीम प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 20 दिसंबर से सिंगल्स मुकाबले होंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के लिए खेली जा रही 29वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में आज गत चैंपियन मणिपुर ने झारखंड को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। दिन के दूसरे मैच में ओडिशा ने तमिलनाडु को 1-1 की बराबरी पर रोका। और हैदराबाद में संतोष ट्रॉफी के लिए खेली जा रही राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन सेना और पूर्व चैंपियन पश्चिम बंगाल ने ग्रुप ए में अपने अपने मैच में आसान जीत दर्ज की। पिछले चैंपियन सेना ने जम्मू कश्मीर पर 4-0 से जीत के साथ अंकों का अपना खाता खोला। एक अन्य मैच में पश्चिम बंगाल में इस बार तेलंगाना को 3-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत के साथ अंक तालिका में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब हमारे आज के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो सचिन, स्टूडियो आने के लिए बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद धर्मेंद्र।
दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।